से दूर भी रहो, यदि दूर भी है कोई बात व्यक्ति, तो भी सेवा के द्वारा उसका साधु संग किया जा सकता है। हम अमेरिका में हैं, साधु इंडिया में हैं, तो उनका सेवा कैसे होगा? इफ वी आर इन इंडिया, साधु एनी एंड एनी डिवोटी इज इन इंग्लैंड और अमेरिका और इन रशिया, हाउ कैन ही सर्व, हाउ कैन ही ऑब्टेन द एसोसिएशन ऑफ वैष्णव गुरु? नो, ही कैन बी एसोसिएटेड, ही विल हैव द सेम फ्रूट इफ दी हैज द मूड दैट आई विल सर्व एंड सेंड समथिंग from his energy to sadhu seva. By his letter, he asked some questions. Who am I? What should I do? How can I serve you? How can I serve Krishna? Sadhu will write from here that in this way you can serve your Gurudev, Vaishnava and Krishna. He sent something as a donation, not as a donation, but as a for service. Then it is sadhu sangh. और यहाँ रह करके भी यदि नहीं करते ये सब, तो ये सेवा, इसलिए दूर से भी साधु संघ हो सकता है। समवर्ती होकर के सेवा करने से जो क्या फल होगा इसकी तो बात ही क्या है, यदि दूर से भी हो सकती है। इफ यू कैन सर्व कृष्ण गुरुदेव एंड वैष्णव फ्रॉम वेरी डिस्टेंस प्लेस, तो व्हाट टू से अबाउट ए डिवोटी हु इज ऑलवेज लिविंग नियरर टू गुरुदेव एंड सर्विंग ऑलवेज? इसलिए उसका फल क्या होगा ये बला नहीं जा सकता, सनातन गोस्वामी जी कहते हैं। किंतु कुछ लोग ये समझते हैं कि गुरु के वैष्णव के निकट रहने से कोई अपराध हो जाता है, इसलिए हम दूर रहेंगे। ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग संपूर्ण रूप से मूर्ख हैं। इसका कारण यह है कि संसार में उच्च और नीच जूनियां हैं, उसमें हम अभी भ्रमण कर रहे हैं। वे अथवा संसार के सागर में जो निमग्न हो गए हैं, अभी संसार में बहुत तरह के अधिकारी लोग हैं, कुछ लोग तो संसार में डूब रहे हैं। कैसे डूब रहे हैं? जैसे मदिरा खा करके, मद्यपान करके कोई व्यक्ति चेतनता नष्ट कर देता है और सोया हुआ है, उसको कुछ करो भी, मारो भी, थप्पड़ दो, अपमान करो, गाली दो, उसको कुछ नहीं आता समझ में ये क्या कर रहा है, एकदम अज्ञानता, चेतनता शून्य है वो। और जो संसार में डूब करके कभी ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं, फिर ऊपर आते हैं, जाते हैं, ये कौन? संसार में जन्म लेते हैं और फिर मनुष्य जन्म लेते हैं और फिर करोड़ों जन्म इधर उधर, फिर मनुष्य जन्म लिया, ये डूबते और ऊपर आते हैं। इस प्रकार से जो जल में निमग्न हो रहे हैं, पुनः पुनः संसार सागर में निमग्न हो रहे हैं, उनके लिए हरिनाम वैष्णवों का संग नौका के समान है। कैसा संग? अभी बतलाया था, निष्किंचना नाम निष्किंचन वैष्णव हो, तो उनका संग कैसा है? नौका के समान में है। कैसी नौका? नौका के पास में चले जाओ और कहा जो मैं आपकी नौका में बैठूंगा, नौका का स्पर्श किया, देखा जो वो पार हो गई, नौका वहीं पर रह गई। ऐसा वो है ना कि आप प्लवम पल्लवम पुण्य जसो, ये भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है, जो याद कर सकते हैं इसको कर लेना। ऐसी भगवान की नौका है जिसको हम आश्रय करके, नौका यही रहेगी और हम देखा जो उस पार में चले गए, कब पार हो गए ये पता नहीं चलेगा। जो साधुओं का संग करने वाले हैं ऐसा ही है, कब पार हो गए, कितने कोटि कोटि जन्म तक, ए भाई सो मत। ये नौका ऐसी है, महत् पदम पदम विपदाम नतेषाम, उनको विपत्ति कभी नहीं होगी, संसार भव सागर को वो पार कर जाएंगे। महत्पदों का, महत्पद माने साधुओं के चरण कमलों का जिन्होंने आश्रय किया, ये नौका है। देखेंगे क्या, बत्त पदम, ये भौर सागर कैसा हो जाएगा, बछड़े का खुर में जितना पानी होता है, चल रहे हैं बछड़े का खुर में पानी है, कब पार करके देखा नहीं, ऐसे ये भौर सिंधु को पार कर जाए, देखा कहाँ गोलोक में कृष्ण की हम सेवा कर रहे हैं, कोटि कोटि का जन्मों का किया हुआ कर्म फल भी दूर हो जाएगा, कितनी हत्या गो हत्या क्या किया होगा, मातृ हत्या भी की होगी, कितने तरह के पाप किए होंगे, भगवान का नाम वैष्णव का संग करने से ये सभी, जैसे अजामिल का और इसका वाल्मीकि का लाखों कोटि लोगों का ये सब देखा जाता है, कितना एक घंटा हो गया। इसलिए यहां पर एक शब्द आया है ब्रह्मविद, ब्रह्मविद संतों का अकिंचन ब्रह्मविद, ब्रह्मविद क्या 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 होगा अर्थ, समस्त वेदों का तात्पर्य जो भक्ति है इसको जानने वाले, वेद उपनिषद शास्त्रों का तात्पर्य क्या है, एकमात्र भगवत भक्ति, भगवत भक्ति का तात्पर्य क्या, उसका सार क्या है, भाव भक्ति, भाव भक्ति का सार क्या है, प्रेम, प्रेम का सार क्या, महाभाव, महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका ठाकुरानी, ऐसे सार को समझने वाले को ब्रह्मविद कहते हैं। इसलिए यहां पर एक शांत तो शब्द आया है, वो साधु लोग कैसे होते हैं, शांत, तत् मोक्ष के विषय में भी जो शांत रहते हैं उनसे इच्छा रही, शांत का अर्थ है शांति से रहना, यहां पर वो अर्थ नहीं, मोक्ष को शांति कहते हैं, यहां पर मोक्ष को भी तिरस्कार करने वाले हैं वो यहां पर शांत है, अर्थ मोक्ष विषय में भी जो शांत है, ये नया अर्थ सनातन गोस्वामी जी दे रहे हैं, और आर्तों के शरण है, अन्न जिस प्रकार से प्राणियों का प्राण है, अन्न प्राणियों का प्राण है, वैसे ही ये सत्संग भी हम लोगों का संतों का प्राण है, जो साधुओं की सेवा करके भगवान को पाना चाहते हैं, धर्म जैसे मनुष्यों के लिए धन है, वैसे हमारा धन क्या, संपत्ति क्या है, वो एक है ना, अद्वैत मोर धन नित्यानंद, धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौर चंद्र, प्राण मोर जुगल किशोर, ये धन, ये धन कौन हुआ, नित्यानंद, और नित्यानंद के जो परिकर भक्तगण हैं वो सभी धन हमारी संपत्ति हैं, यदि धन मिल रहा हो उपेक्षा करोगे तो धन चला जाएगा, बस ऐसे ही प्राणियों के लिए ये धन संपत्ति है, क्या, वैष्णवों का संग, इसलिए धन जैसे साधु पुरुषों के संसार में पतनशील मनुष्यों को परित्राण करता है दुखों से, ऐसे साधु संग हमारी सब समय रक्षा करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि साधु संग से बढ़कर के हमारे लिए कोई संपत्ति नहीं, इसलिए साधु संग से भगवान भी मिलेंगे, हमारा ताप भी दूर हो जाएगा, कृष्ण के चरणों में प्रेम होगा, इससे बढ़कर तो और क्या हो सकता है, ऐसे साधु संग के प्रति अवहेला न हो, और जहां यह सुलभ है हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा ऐसा समझो, इसलिए अहंकार क्रोध द्वेष लोभ अहंकार सब दोनों दुर्गुणों को छोड़ करके अत्यंत नम्र होकर के इसका सेवन करो यदि मिलता है, इससे हमारा जन्म कोटि सुधर जाएगा। आज यहीं तक रहे, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ये क्या चीज है, अभी आ रहा है आगे क्या, वो रसायन, रसायन की धारा लाना है, कैसे आएगा, खोदना होगा, तो जमीन को खोदने से तो उसकी धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पर आएगी, तो इसलिए खोद रहे हैं सनातन गोस्वामी उस धारा को लाने के लिए, इसलिए इन सब चीजों को दुर्गुणों को दूर करते हुए वो धारा को आस्वादन करने के लिए चेष्टा हम लोग करें। सनातन गोस्वामी जी बृहद भगवतामृत में बतला रहे हैं, इस सबको याद रखना चाहिए, और इसमें
उपस्थित होना चाहिए।
कौन सा कल श्लोक दिया था बोलो, कौन सा श्लोक दिया था? इसमें सनातन गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से विशेष करके भागवत से सत्संग का महात्मा बतला रहे हैं। स्वयं कृष्ण उद्धव जी को बतला रहे हैं, सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि, अत्यंत गोपनीय होने पर भी तुमको बतला रहा हूं। संग में भृत्यः, क्यों तुम हमारा सेवक है। सुहृदः, हमारा सुहृद है और सखा है। सुहृद किसको कहते हैं? जो हृदय से ही हमारी भलाई की कामना करता है उसको कहते हैं सुहृद। हमारे प्रति अच्छे भाव रखने वाला। और सखा, सख भाव से जो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम हमारा सखा मित्र और भिष्य है, इसलिए सुगोप्य चीज मैं, रहस्यपूर्ण चीज आप तुमको बतला रहा हूं। यदि कोई साधु वृत्ति का श्रद्धालु व्यक्ति हो तो उसे कहना, नहीं तो मत कहना। जिनके कृत्य अच्छे नहीं हो, जो साधु गुरु वैष्णव की सेवा नहीं करता है उसको मत बतलाना, और जो साधु गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं, प्रीति है तो उनको कहना, नहीं तो ये लाखों रुपयों का एक नोट है, करेंसी नोट, उसको तोड़वा करके अपने भोग में लगाएगा। कहाँ थे? नरोध है अति मांग जोगो न संख्यम धर्म एवच न स्वाध्याय न तपस्त्यागो न इष्ट पुरुषम न दक्षिणा व्रतानी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा क्षमा जमा यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगाप हो हिमा। इसके व्याख्या में बतला रहे हैं, हे सखे, सब प्रकार के वैषयिक प्राकृत संगों को दूर करने वाला जो सत्संग है वो मुझको इतना अधिक वशीभूत करता है, सबसे अधिक सत्संग, जो जो सांख्य धर्म स्वाध्याय सब त्याग इष्टापूर्ति दक्षिणा व्रत यज्ञ छंद तीर्थ पर्यटन नियम और जम सकल हमको उतना वशीभूत नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको यह रहस्य बतलाता हूं, हमारे प्रिय जो भक्त हैं उन लोगों का संग, सत्संग, महत्पुरुषों का संग हमको जैसे वशीभूत कर लेता है, ऐसे ये सब नहीं करते। जिस प्रकार से प्रिय पत्नी अपने पति को वशीभूत कर लेती है, जिस प्रकार से द्रौपदी अपने पांचों पांडवों को वशीभूत कर लेती हैं, ठीक उसी तरह से ये सत्संग हमको वशीभूत कर लेता है। और यज्ञ यज्ञ तप तपस्या जितने हैं, त्याग इष्टापूर्ति दक्षिणा वेद अध्ययन तीर्थ पर्यटन नियम जम ये सब नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये हुआ, ये लोग भी कुछ करते हैं किंतु ऐसा नहीं करते जितना सत्संग करता है। किंतु और जगह लिखा है ये लोग भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते, वशीभूत करना तो दूर रहा। तो यहां जो कहा गया इसका अर्थ कुछ अलग अलग हो। जैसे योग शब्द, योग माने क्या? आत्मा और परमात्मा का जो योग है, आत्मा और ब्रह्म का जो योग है, जिससे कि आसन जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ये अष्टांग योग हैं। इस योग से भगवान वशीभूत नहीं होंगे, प्रसन्न भी नहीं, ये बाहरी चीज है। किंतु जब भक्ति योग इसका अर्थ होगा तब कुछ कुछ प्रसन्न हो। गीता का जो योग बतलाया गया वो भक्ति योग है, तो भक्ति के योग से प्रसन्न होंगे। किंतु महाप्रभु जी कहते हैं यह बाह्य, यह भी बाहरी है, उसे वशीभूत नहीं होंगे, उसमें ऐश्वर्य ज्ञान। सांख्य माने तत्वों का विवेचन, जीव तत्व, ईश्वर तत्व, माया तत्व, भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, बलराम तत्व, गोपी तत्व, भाव तत्व, ये सब जो हैं यहाँ पर कहा गया है, इसके द्वारा भी हों। किंतु जहाँ पर सांख्य का तात्पर्य परमाणु से यह जगत रचित हुआ है, यह कपिल देव का, कपिल माने निरीश्वर कपिल अग्नि वंशज, उनका सांख्य योग भगवान का भक्ति का विरोधी है, उससे नहीं होगा। इसलिए यहाँ सांख्य कहने से जो तत्व ज्ञान है उसको यहाँ पर कहते हैं, इससे होंगे तत्व ज्ञान से। किंतु इसके लिए भी कहा ज्ञाने प्रयास उपासना मनते, ज्ञान का प्रयास छोड़ो, तत्व ज्ञान से भी भक्ति नहीं होगी। सहायक पहली स्थिति में होगा किंतु इससे प्रेम नहीं होगा, इसलिए इसको भी छोड़ने की जरूरत, इससे आगे चलो। भगवान के लीला कथाओं का श्रवण करते करते अपने आप जो तत्व ज्ञान होगा वो भक्ति में सहायक होगा, अन्यथा भक्ति में सहायक नहीं होगा। जीव क्या है? भगवान का अंश है। कृष्ण कौन है? समस्त ईश्वरों के ईश्वर, स्वयं आदि सबके आदि, स्वयं अनादि, सर्वशक्तिमान है, ये कृष्ण तत्व। इससे क्या होगा? ऐश्वर्यमयी भक्ति होगी, प्रेम भक्ति नहीं होगी, उनके प्रति प्रेम नहीं होगा, प्रेम भक्ति के लिए बाधक है। इसलिए इस तत्व ज्ञान को भी छोड़ करके नित्य उनकी कथाओं को श्रवण करो। इसलिए यहां पर साधारण रूप में जो सांख्य, अग्नि वंशज कपिल और भक्त कपिल, भगवान कपिल, दो अंतर है। भागवत में जिस कपिल की बात लिखी गई है वो भागवत है, भागवत तत्व माने भगवत तत्व है, भगवान है, सत्तावेश अवतार है। और अग्निवंश में जो स्थित जो पैदा हुए हैं वो निरीश्वर सांख्य को उन्होंने लिखा। भगवान की जरूरत नहीं है, अपने आप मन बुद्धि अहंकार चित्त और प्रकृति मिलकर के जगत की सृष्टि हो गई। चित्त जगत की सृष्टि कैसे हुई? वो भी संख्या से हुई। जीव की सृष्टि होती है? नहीं। भगवान की सृष्टि होती है? नहीं। ये प्रकृति जो करती है वो भी बिना पुरुष के सहायता से नहीं करेगी, और उसमें भी अजागल स्तन, अजागल माने बकरी के, कुछ ऐसे बकरियां होती हैं जिनको यहाँ पर उनके स्तन जैसे लगा रहता है, तो उसमें दूध नहीं आएगा। इसलिए प्रकृति वैसे ही दिखलाने के लिए है। असल में क्रिया कौन करता है? प्रभु, भगवान और भगवान की चित्त शक्ति इत्यादि, ये साधारण प्रकृति से नहीं है। इसलिए भगवत अवतार जो कपिल हैं वो सांख्य कुछ अधिक ठीक है, किंतु उसके द्वारा भी नहीं, क्रमशः भगवत भक्ति के द्वारा ये ठीक होगा। धर्म माने साधारण तरह से अहिंसा धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा माने क्या? अहिंसा परमो धर्म किसको कहते हैं? किसी को नहीं मारना ही अहिंसा है। तन मन वचन से किसी को मारो मत, अहिंसा है। किंतु भागवत के अनुसार में यह अहिंसा नहीं है। अहिंसा क्या है? अहिंसा है शुद्ध भक्ति यदि भक्तों में दिया जाए लोगों में, ये अहिंसा है। कोटि कोटि जन्मों के लिए अहिंसा से वो बच जाते। यदि किसी के अंदर में भक्ति देकर दिया जाए, संचरित कर दिया जाए, उसका कोटि कोटि जन्म सफल हो जाता है। इसलिए ऐसे अहिंसा की जरूरत। जो लोग माता पिता भाई बंधु अपने बच्चे को भगवान का भजन नहीं करने देते और सांसारिक सुखों में लगाना चाहते हैं वो बड़े हिंसुक हैं, बड़े हिंसुक हैं। हिरण्यकश्यपु, संडामर्थ इत्यादि बड़े हिंसा परायण हैं, कोटि कोटि लोगों को भगवान के भक्ति से वंचित करते हैं, इसलिए ये हिंसा है। तो जो लोग अपने बच्चों को और खुद भी भजन नहीं करते और नहीं करने देते वो लोग सब हिंसुक हैं। धर्म में अहिंसा और वर्णाश्रम आचार, वर्णाश्रम आचार मैंने वर्णाश्रम धर्म के मध्य से भगवान की उपासना करना, ये वर्णाश्रम धर्म। घर में ठाकुर जी रहें, राधा कृष्ण रहें, सालग्राम रहें, नारायण रहें, राम रहें, उनकी सेवा करते हुए उन्हीं का सेवक बन करके सेवा करें, ये वर्णाश्रम धर्म है। किंतु इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी है शरीर में आत्माभिमान रहता, मैं ये शरीर, और जब तक यह रहता तब तक उपासना शुद्ध नहीं होती, लोगों के समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं ये सब जानने की जरूरत क्या है, ये भगवत तत्व इत्यादि और भक्ति, हम भगवान के चरणों में भक्ति अमर अर्पित करें, भगवान का भक्ति करेंगे, असंभव है, नहीं होगा। जब तक कि तत्व से नहीं इन चीजों को समझेंगे, जो भक्ति क्या है, कृष्ण क्या है और सब विचार नहीं समझेंगे तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। एकांतिक भक्ति किसको कहते हैं ये भी समझना चाहिए, भक्ति है किसका चेतना, किस चीज को भक्ति कहते हैं। चित्त की वृत्ति जब अनायास ही स्वयं भगवान के चरणों में तेज धारावत अविच्छिन्न गति से लगने लगे तब तो भक्ति है, भगवान के लिए ही सब कुछ करने लगे, तन मन वचन क्रिया से जो कुछ होगा वो भगवान के लिए करने लगे। उससे भगवान से कुछ नहीं चाहेगा जो हमको प्रभु अर्थ दो, हम आपकी इतनी भक्ति कर रहे हैं, संसारी कोई चीज की लालसा नहीं, परमार्थिक भी नहीं, मुक्ति भी नहीं। स्वाध्याय मैंने वेद अध्ययन, वेदों के अनुगत पुराण इत्यादि अध्ययन, सब अध्ययन कहते हैं वेदाध्ययन, भाई इससे भी नहीं होगा। तप, तप मैंने क्लेश, शरीर को क्लेश देना, तपस्या, त्याग, त्याग मैंने सब छोड़ करके सन्यासी हो जाना, इष्टापूर्त, कुएं, तालाब, पुष्करणी इत्यादि बनाना, घाट बनाना, लाइट देना, जान दकार है, लोक हित कर कार्य, दक्षिणा, दान, इसे लक्षित होता है। किंतु इसे भगवान तो बहुत प्रसन्न ही नहीं होते। दान माने क्या, यदि किसी की अपनी चीज है तो उसका दान कर सकता है। संसार में अपनी क्या चीज है, शरीर ही जब नहीं तुम्हारा तो तू क्या दान करेगा। सेवा करने की प्रवृत्ति हो जी, इसके द्वारा भगवान का सब कुछ है, ये जीव भगवान के हैं, उनकी सेवा में लगे तब तो कुछ कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। व्रत, एकादशी, उपवास, मायावादी, अद्वैतवादी, कर्मी, जोगी, ज्ञानी, सब जितने देवता की उपासना के सभी लोग एकादशी करते हैं। यह हिंदू की में एक प्रचलित नहीं है, किंतु सब एकादशी एक नहीं है। जो संसारी कर्मों के लिए, दुखों को दूर करने के लिए एकादशी की जाती है, और शुद्ध रूप से भगवान की सेवा प्राप्ति करने के लिए जो की जाती है, वो एकादशी दोनों एक नहीं है, बहुत अंतर है। यज्ञ, देवताओं की पूजा, साधारण रूप में, अविशेष रूप में क्या, यज्ञार्थात कर्मणों को, अन्यत्र कम वंदना तदर्थम कम कंतेय मुक्त संग समाज, संसारिक समस्त आसक्तियों को दूर करके मद अर्थे माने कृष्ण के प्रीति के लिए करो, ये यज्ञ होगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जितने भी कर्म हैं वो बंधन है, लाखों लाखों जन्मों में संसार में लाएंगे, मरोगे और फिर जाएंगे, इस तरह से कर्म बंधन के चक्र में पड़े रहेंगे। और यदि यज्ञ होगा किसके लिए, विष्णु के लिए होगा, तो संसार से मुक्त कर देगा, अनासक्त होकर करे। और संकीर्तन यज्ञ हो तब तो, और शुद्ध रूप में वैष्णव के अनुगत्य में वो सबसे श्रेष्ठ है। तीर्थ,
गंगा इत्यादि तीर्थ, वृंदावन इत्यादि धाम, ये सब केवल गंगा स्नान तो सभी करते हैं, किंतु एकांतिक रूप में वृंदावन के ऊपर, ब्रज के ऊपर प्रति स्नेह हो तब तो उसका कल्याण हो जाए। बहुत से लोग वृंदावन में, मथुरा में, राधा कुंड के जहां जहां ये सब कृष्ण की लीलाएं हुई वहां रहते हैं, किंतु सबसे बड़ा तीर्थ मानते हैं गया को, और वहां पर पिंड जाने देने के लिए जाते, तो उसका क्या हुआ, विपरीत फल हो गया। अरे वृंदावन से कोई श्रेष्ठ है नहीं, उनका कहां धाम स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, उसको छोड़ करके गया में पिंड देने के लिए जाते हैं, तो भगवान के प्रति उनकी आस्था क्या रही, इसलिए बहुत दुर्भागा लोग हैं। गंगा के स्नान करने से पीछे पवित्र होते हैं और भक्तों के संग में साथ ही साथ में पवित्र हो जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ है साधु सब। किंतु साधु की कौन है ये पीछे बतलाएंगे। यम नियम, नियम माने शौच इत्यादि द्वादश प्रकार के नियम हैं। सवेरे उठ करके स्नान से उठ करके भगवान की प्रार्थना करते हुए नित्य नैमित्त कार्य करना, किया नहीं, दांत नहीं धोया, पैखाना टट्टी नहीं गया, पवित्र नहीं हुआ, स्नान नहीं किया और सब कामों में लग गए, यह नियम नहीं हुआ। हम लोगों को भी ऐसे करना चाहिए, सब प्रकार से पवित्र होकर के भगवान ठाकुर जी का अर्चन करें और उनका आरती इत्यादि दर्शन करें और नियम पूर्वक अपना सब काम करें। यम यम अहिंसा इत्यादि द्वादश प्रकार के हैं। भगवान ने और भी कहा है अहिंसा, किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा न हो। सत्य, सत्य भगवान है, उनकी भक्ति और भगवान का नाम है सत्य। जान करके झूठ बोलो मत, यद्यपि ये जो सत्य है ये यथार्थ सत्य नहीं है, बात ठीक है। जैसे मैंने पूछा ये क्या नाम है, आपने अपना नाम बताया, ये सत्य नहीं है। कहिए कहाँ घर है, तो मथुरा में, ये भी असत्य है। जो कुछ भी जगत में कहेंगे वो सब असत्य है। सत्य क्या है, जब आत्मा की अनुभूति होगी और आत्मा का जो विषय होगा वो सत्य होगा, उसका विषय है भगवान, तब तो सत्य होगा, नहीं तो अभी झूठ बोलने के लिए बाध्य हैं। किंतु तो भी व्यवहार में झूठ मत बोलो, अरे भाई तुम आरती में नहीं आया, क्यों नहीं आया, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। अरे ये सीधा नहीं कहा जी, आलस्य लग रहा था, मैं नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब, तो सचमुच में तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा ही समझो, इसलिए झूठ मत कभी बोलो। छोटी छोटी बातों के लिए झूठ मत बोलो, नहीं तो किसी का विश्वास नहीं रहेगा। देखो सत्य एक ऐसी चीज है, दुर्योधन जैसा व्यक्ति युधिष्ठिर में विश्वास था और कंस ने भी विश्वास कर लिया, वसुदेव महाराज को और लड़के लौटा दिए, ये चीज है सत्य। यदि सत्य कुछ दिन बोलोगे एक वर्ष, तो तुम्हारे मुख से जो कुछ निकालेगा वो सत्य हो जाएगा। परीक्षा करके देख लो, हमने तो परीक्षा किया है, यदि कहेगा ना कुछ भी कह दिया वो जरूर सत्य हो जाएगा, और फिर एक वर्ष के बाद में जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर झूठ नहीं बोल सकते, ये भी साथ साथ हो जाएगा। अचौर्य, चोरी ना करो, चोरी माने बिना किसी से पूछे उसकी वस्तु को ले लेना, चोरी है, ये चोरी मत करो कभी, चाहे लाख सोना पड़ा रहे, हीरा जवाहरात पड़ा रहे, मत छुओ यदि भक्ति चाहते। असंग, दुर्जन लोगों का संग मत करो, विषय लोगों का संग मत करो, साधु पुरुषों का। बहुत से लोग साधु पुरुषों का संग करने के लिए डरते हैं, हमारे गुरु जी कहते थे, बहुत से लोग हमारे निकट ही नहीं आते हैं, बहुत डूबते हैं, जम जैसा हमको भय करते हैं, और जो एकांतिक हैं सेवक वो हमको डर नहीं करते हैं। एकदम हमारे पास में चले आते हैं। इसलिए साधु पुरुषों से डरने की जरूरत नहीं है और संग से कुसंग से डरने की जरूरत है। बहुत से लोग दिन भर अपनी बात कहते हैं, मैं अस्वस्थ हो गया, मुझे ये रोग हो गया, मुझे इस चीज की आवश्यकता है नहीं होता, हमारे साथ उसने कैसा व्यवहार किया, हमने उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया, उसने बुरा किया, दिन रात पचाल पाते हैं, किंतु भक्ति की बात नहीं करेंगे, उनका स्वभाव ही ऐसा है, क्या करेंगे। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। दो संग है, जिसको शरीर में आसक्ति है, विषयों में ममता है, उसका संग नहीं करना। असंचय, भगवत भक्ति के अतिरिक्त तो कुछ संचय मत करो, जो समर्थवान है वो करें, किंतु वो भी नहीं, उनको भी नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जी संचय करते हैं, इसलिए हम लोग भी करेंगे, मरोगे, ऐसा नहीं। महाप्रभु जी का आदर्श हम लोगों को रखना चाहिए, स्वधर्म में स्थिर विश्वास, हम जो कर रहे हैं इसमें एकदम विश्वास पक्का, इसे हमारा जरूर कल्याण। कृष्ण भक्ति में गोपियों जैसी भक्ति को मैं स्थिर विश्वास रहे, कभी उसे टलमल नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, सब समय ब्रह्म का चिंतन, कृष्ण का, यहां पर ब्रह्म माने कृष्ण चिंतन और उनके परिकरों का, और चरित्र से भी ब्रह्मचर्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मौन, मौन माने क्या, भगवत कथा के अतिरिक्त, तत्व कथा के अतिरिक्त, कृष्ण की कथा के अतिरिक्त, हरिनाम करने के अतिरिक्त, भगवत कथा चर्चा के अतिरिक्त और सब समय मौन रहे, जीवा पर अंकुश लगा, इधर उधर की चुकनी चुपड़ी बातें न करें, स्थैर्य स्थिर हो, चंचल चित्त नहीं होना चाहिए। क्षमा, लोग कोई दोष करते हैं, त्रुटि करते हैं, तभी उनको क्षमा करनी चाहिए, जानते नहीं है इसलिए ऐसा करते हैं, इसलिए क्षमा उनके प्रति होनी चाहिए। भय, कोई अपराध करने में भय हो, किसी की अवज्ञा करने में भय हो, और बाह्य शौच अभ्यंतर शौच, भीतरी और बाहरी शौच। भीतरी शौच भगवान नाम से होगा, जस मरित पुंडरी काक्षं स बाह्यभंतर, बाह्यभंतर भर सब सब सोच, जो कृष्ण का करेगा तो और भी अधिक। पुंडरी कौन है, पुंडरीक में राम भी आएंगे, निसिंह भी आएंगे, समस्त विष्णु तत्व सभी का है, चाहे शुक्र रूप में भी आएंगे कमल लेने, किसी भी रूप में आएंगे उनका कमल लेने, किंतु कृष्ण कहने से नंदनंदन का बोध, इसलिए विशेष रूप में उनका होना चाहिए। तो उसे अंतर और बाहर में, जो कृष्ण का मंत्र जपते हैं, गोपाल मंत्र जपते हैं, काम गायत्री जप करते हैं, इन लोगों का बाहरी और भीतरी शौच हो जाता है, पवित्र हो जाते हैं, किंतु देखते हैं कि यह मंत्र जपने पर भी किसी का नहीं होता, तो इसका मतलब ये करते नहीं है, जैसा करना चाहिए एकाग्र चित्त से ऐसा नहीं करते, एकाग्र चित्त से हो। प्रार्थना मूलक जो उस मंत्र में है, स्वाहा तो स्वाहा कर दो, अपने को अर्पण कर दो, मंत्र का जो भाव है वो आना चाहिए, उदयात हमारे हृदय में उदित हो, प्रार्थना मूलक हो, तब देखो जैसे चित्त स्थिर हो जाएगा। ठीक रूप में जप, क्या हरिनाम कीर्तन इत्यादि, तपस्या होम धर्म में आदर, आतिथ्य हमारी पूजा, तीर्थ भ्रमण दूसरों के उपकार के लिए चेष्टा, सब समय जो कुछ भगवान ने दिया उसे संतोष रखो और अधिक की मत इच्छा करो, यह भी एक बहुत बड़ा भारी गुण है, जो भगवान ने हमें दिया है उसी से संतुष्ट रखो, और अधिक हाय हाय करेगा तो भक्ति नहीं रहेगी। आचार्य की सेवा, अपने गुरु की सेवा, यहां पर अस्तेय शब्द का अर्थ मन के द्वारा भी किसी की वस्तु मत लो, शरीर के द्वारा तो बात क्या है, क्या आया मन के द्वारा भी किसी की चीज, यहाँ पर कोई चीज गिर गई, एक घड़ी गिर गई, कभी बहुत अच्छा हो गया बस, किसी को नहीं बतलाया, ऐसा नहीं मन के द्वारा भी देख करके कोई वस्तु ये हमको अच्छी ले लेता तो बहुत अच्छा हो, मन के द्वारा भी मत करो। सर्वसंग आप हो, गुणमय और गुणातीत सभी विषयों का संग, मन का अभिनिवेश इसको भी दूर करो, अपहरण कर लेता है कौन, सत्संग। वैकुंठ की इच्छा यदि हमारी इच्छा है और ब्रज के रसिक भक्तों का संग होगा तो क्या करेंगे वो, वैकुंठ की इच्छा भी दूर कर दो। कृष्ण कहते हैं मेरी भी इच्छा को दूर कर देते हैं, मैं वैकुंठ में हूं यदि तो भक्तों का संग यदि मिल जाता है, कैसे भक्तों का, रसिक भक्तों का संग मिल जाता है तो हमारी वैकुंठ में रहने की इच्छा नहीं, हमारी इच्छा को भी वैकुंठ के संगों की स्प्रिया को भी दूर कर देते हैं, ऐसा संगों का भगवान अपने लिए भी कहते हैं, तो भक्तों के लिए बात क्या। जितने प्रकार के संग माने यहाँ पर आसक्ति, आसक्ति को ये दूर कर देता है कौन, साधुओं का संग, महापुरुषों का संग। इसलिए करें अर्थात वैकुंठ विषयक जो क्रीड़ा की आसक्ति मेरे अंदर में उसको भी दूर करा देते हैं, वृंदावन में लीला की आसक्ति को लगा देते हैं। अतएव महत् व्यक्तियों का संग के प्रभाव से कोई भी कृतार्थ हो सकता है, महत् व्यक्ति होना चाहिए। विदुर ने इसके संबंध में कहा है सुतस्य पुंसां सुचिर समस्य नन अंजसा सुरिभि इड़तई अर्थ इत्यादि। विदुर ने बतलाया है चीरकाल से जो शास्त्र श्रवणों का परिश्रम का जो फल है, बहुत दिनों तक शास्त्र का श्रवण किया, सबका अर्थ पंडितों ने निश्चय किया, शास्त्र श्रवण का फल क्या है, जिनके हृदय में भगवान मुकुंद के चरण कमल विद्यमान रहते हैं, सब समय भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता है, ऐसे वैष्णव के संग की पिपासा को जगा देना, ऐसे भक्तों का संग दिला देना, ये समस्त शास्त्रों का ये तात्पर्य। साधु संग सर्व शास्त्र कौर लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा सा यदि साधुओं का संग है, साधु कैसा महत्पुरुष, तो क्षण मात्र में वो कृतार्थ हो जाता है, किंतु साधु साधु संग होना चाहिए, लोभी और ये सब जो गुण बतलाया, ऐसा नहीं भगवान का एकांतिक रसिक भक्त हो, तत्वज्ञ हो। और वृंदावन चंद्र जो वृंदावन के हैं इनके चरणों में एकांतिक अनुराग हो, विशेष करके कृष्ण के का जो हृदय है, कृष्ण को जो सबसे प्यारी हैं गोपियां, उनके चरणों में भक्ति सबसे बड़ी है, तो ऐसा कोई भक्त हो उसके संग से उसके सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए पंडित उन्हीं को कहते हैं नहीं। इसलिए यथार्थ जो पंडित हैं ये साधु संघ की महिमा का वर्णन करते हैं, ये इससे बढ़कर के जगत में कुछ नहीं। यदि साधु संघ हो गया तो उसका श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन सभी हो जाएगा, और साधु संग नहीं मिला ये कुछ भी नहीं होगा। इसलिए साधु संग की महानता है, जिसका जैसा साधु संग होगा ऐसे ही उसकी बुद्धि भी होगी। अर्थात भगवत भक्तों का गुण महात्म और चरित्र का बारंबार श्रवण करना, यही शास्त्रों का तात्पर्य है। भगवान के चरित्र से भी अधिक साधुओं की महिमा का श्रवण करना संतों का ये और भी उपयोगी हम लोग, क्यों कैसे वो उन्होंने भगवान को पाया ये सब साधु ही बतलाएंगे। भगवान के चरणों में कैसे मति होती है ये साधु बतलाएंगे, भगवान नहीं बतलाएंगे। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी ने भी कहा है, ज्ञान निवृत्ति स्तनुभृतम तव पाद पद्म ध्यानात् भवत् जनक कथा श्रवणेन वाच्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिम्नमपि नात्माभूत् किंबा अंतकाशित लुलितांग पतितांग विमानात्। कहते प्रभो, ध्रुव जी कह रहे हैं भगवान के लिए, आपके चरण कमलों का जो ध्यान करने वाले उनका जैसा सुख है और आपकी लीला कथाओं को सुनने में जो सुख है, आपके भक्तों की का जो चरित्र है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, शिल रूप गोस्वामी, बिल्ल मंगल ठाकुर इत्यादि, गोपियां इत्यादि ये लोग हैं, इनकी कथाओं सुनने से जो सुख लाभ होता है वो भगवान के आत्म साक्षात करने से भी नहीं होता, भगवान के दर्शन से भी नहीं होगा, और ब्रह्म साक्षात नाम की तो तुच्छ बात है। एक होता है ब्रह्म साक्षात्कार, एक होता है आत्म साक्षात्कार, एक होता है भगवत साक्षात्कार, इन तीनों चीजों को समझो। आत्म साक्षात्कार किसको कहते हैं, जब आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा कैसा है जब इसका होता है, जब देखते हैं तो इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार उसको कहते हैं भगवान की अंग कांति का जब दर्शन होता है तो उसको कहते हैं ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार। और कृष्ण का जब दर्शन होता है, राम का दर्शन होता है, नारायण का दर्शन होता है, तो ये भगवत दर्शन है, साक्षात्कार है। जब सपरिकर कृष्ण का दर्शन जब होता है तो उसे कहते हैं राधा कृष्ण सबका सहित, कृष्ण का साक्षात्कार, एक एक से सर्वश्रेष्ठ है। आत्म साक्षात्कार से कुछ लाभ नहीं होता, ब्रह्म साक्षात्कार से कुछ लाभ नहीं होता, संसार से मुक्ति मिल जाएगी बस, किंतु आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए भगवत भक्तों के लीला चरित्र में श्रवण करने में जो आनंद होता है, जैसे कृष्ण के साथ में भक्तों का विहार, सखा लोग कृष्ण के साथ में जा रहे हैं, गाय चरने के लिए छोड़ दिया है, गाय चरने जा रही हैं, सखा लोग कृष्ण के कहने से गायों को संभाल रहे हैं, धीरी धीरी नीरी नीरी तीरी तीरी, माने क्या तीरी तीरी, माने आ जाओ पानी में मत रहो, और चूचू पानो पियो, पानी बस चूचू करके पानी पीने लग जाती हैं गाय। सखा कोई कहता है जी प्रभु मैं आपका सखा हो जाऊं और ऐसे ही आप आदेश दें, उन आदेशों को मैं पालन करने लग जाऊं, किसमें इसमें आनंद है, इन लीला कथाओं में कितना। और इसलिए यशोदा मैया कृष्ण को उठा बैठा रही हैं, आज तुम उठो बैठो तो और प्रतिज्ञा करो कान पकड़ करके जो मैं चोरी नहीं करूंगा। तो कृष्ण ऐसा करना चाहते हैं किंतु कर नहीं पाते, कान नहीं पकड़ते, केवल ऐसे ही बैठते। कृष्ण नहीं ना ऐसा नहीं होगा, तुम कान पकड़ करके बैठो, मतलब उस पर ब्रह्म को यशोदा जी कैसे नचा रहे हैं, और कृष्ण को आनंद हो रहा है, कृष्ण को भी आनंद है, जो सखा जो सुन रहे हैं, जो साधक लोग सुन रहे हैं उनको भी आनंद हो रहा है। और सबसे बड़ा आनंद होगा किस में, जब गोपियों के साथ में उनका व्यवहार होगा, इसको सुनकर के भक्त लोग बड़े आनंदित हो जाते, भगवान भी आनंदित हो जाते। इस आनंद की उपमा कहीं विश्व में नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं मैं आप मुझको देवता बनाना चाहते हैं या ध्रुव लोग लेना चाहते हैं, इसे मैं क्या करूंगा, इसकी हमको जो जन्म जन्म जहां मेरा जन्म हो वहां पर आपके प्रिय भक्तों का मुझे संग मिले और आपकी और उनके लीला कथाओं को सुनने का मुझे सौभाग्य मिले, इससे बढ़कर के और कोई चीज नहीं। हम लोग भी गोलोक वृंदावन अथवा कुछ नहीं चाहते, ऐसे भक्तों का पहले संग हो और उनके संग में भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करते हैं, दिया जापन करें, भगवान नाम कीर्तन करें, अभी यही चाहते हैं। देवता लोग विमान के सहित फिर नीचे गिर जाएंगे, सिर नीचे करके और पैर ऊपर करके वहीं से गिर जाएंगे। जब उनका काल समाप्त हो जाएगा, भोग का हो जाएगा। और भक्तों का ऐसा नहीं होता। मैं ऐसे भक्तों का संग और ऐसे भक्तों का लीला चरित्र उन भक्तों के मुख से सुनना चाहता हूं। तात्पर्य जिसका सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, महत सकले प्रसंग श्रवण में भी जब कृतार्थ आदमी हो जाता है, महत माने ऐसे महत्पुरुषों के संग में जो कथाएं उसी से ही यदि ऐसा हो जाता है कृतार्थ, तो महत्पुरुषों के संग में साधारण लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है तो महत्पुरुषों के संग में न जाने क्या हो जाएगा। इसलिए महतों के जो अनुगत भक्त हैं उनका भी संग करो। महत्पुरुषों को हम समझ नहीं सकेंगे। सुखदेव गोस्वामी जैसा नंग धड़ंग कोई भक्त आ गया और उल्टी सीधी बोलता है, हम समझ ही नहीं सकेंगे। इसलिए उनके जो सेवक जो मध्यम अधिकारी हैं उनका भी संग करो। पुनः ध्रुव जी कहते हैं, हे कमल नयन हरि, आपके चरण कमलों का की सुगंध से जिनका हृदय मतवारा हो रहा है। आप भगवान के चरण कमलों में कैसा सुगंध होता है, बहुत सुकोमल है, उसे सुगंध निकलता है। और उसके साथ में यदि तुलसी मिल जाए ना तो और भी, ऐसा उनके चरणों में सुगंध है। और ऐसे सुगंध युक्त चरण कमलों को जो हृदय में ध्यान करने वाले हैं उनका हृदय स्निग्ध हो जाता, बड़ा सुगंधित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का, महत्पुरुषों का जो यदि कोई संग करे तो अत्यंत प्रिय अपने इस शरीर को और देह